एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज ज्ञान गोष्ठी में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नाम की जो विज्ञान का कह सकते हैं पर्याय बन गया है, सर आइज़ैक न्यूटन।
नमस्ते। हाँ, न्यूटन एक ऐसा नाम जिसने वाकई दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल डाला।
बिल्कुल, सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि पूरी की पूरी वैज्ञानिक क्रांति के वो सबसे अहम चेहरों में से एक थे।
सचमुच, और उनका काम सिर्फ मतलब लैब तक या किताबों तक ही सीमित नहीं रहा, उसने हमारे सोचने के तरीके पर, है ना, ब्रह्मांड को हम कैसे समझते हैं उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है।
हाँ, उन्होंने ये दिखाया कि ये जो इतना विशाल, इतना रहस्यमयी सा लगता है ब्रह्मांड, वो असल में कुछ तय नियमों पर चलता है और हम उन नियमों को समझ सकते हैं।
बिल्कुल व्यवस्थित, समझने योग्य।
और इस बातचीत में हम जिन स्रोतों का सहारा ले रहे हैं वो हैं गुजराती पुस्तक सर आइज़ैक न्यूटन जीवन अने वारसो के कुछ खास हिस्से, और एक अंग्रेजी लेख आइज़ैक न्यूटन द मैथमेटिकल फिलोसोफर हु यूनिफाइड हेवन एंड अर्थ।
तो चलिए इस असाधारण दिमाग की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं।
शुरुआत करते हैं उस समय से, उस माहौल से जिसमें न्यूटन जी रहे थे, 1643 से 1727। इंग्लैंड के लिए तो ये बड़ा उथल पुथल वाला दौर था, है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा। एक तरफ तो बौद्धिक स्तर पर बड़ी क्रांति चल रही थी, वैज्ञानिक क्रांति जिसे कहते हैं। अरस्तु और चर्च की जो सदियों पुरानी मान्यताएं थीं,
हाँ,
उनको सीधी चुनौती दी जा रही थी।
गैलीलियो, केपलर, डेकार्ट्स, ये लोग पहले मैदान में आ चुके थे। मतलब सवाल उठा रहे थे कि दुनिया को सिर्फ पुरानी किताबों से नहीं बल्कि देखकर, परखकर, गणित से समझना चाहिए।
बिल्कुल सही, वही प्राकृतिक दर्शन का दौर। अब सिर्फ विश्वास काफी नहीं था, सबूत चाहिए थे, तर्क चाहिए था, अवलोकन, प्रयोग, गणित, यही नए हथियार थे।
और इसी सोच को एक तरह से संस्थागत रूप मिला 1660 में, जब लंदन में रॉयल सोसाइटी बनी।
हाँ बिल्कुल, और न्यूटन बाद में उसके अध्यक्ष भी बने। वो एक मंच था जहाँ नए आइडियाज पर बहस होती थी, लोग अपने प्रयोग दिखाते थे, एक नया माहौल बन रहा था।
लेकिन ये सिर्फ विचारों की उथल पुथल नहीं थी, इंग्लैंड में तो राजनीतिक तौर पर भी बहुत कुछ चल रहा था। गृह युद्ध हुआ, राजा को फांसी दी गई, फिर राजशाही वापस आई, फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन।
हाँ हाँ जबरदस्त अस्थिरता थी।
तो क्या इस सब का न्यूटन के काम पर कोई असर पड़ा? मतलब अजीब सा लगता है कि बाहर इतनी मारकाट मची है और कोई अंदर बैठकर ब्रह्मांड के नियम खोज रहा है।
ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। कौन जाने, शायद इसी बाहरी दुनिया की अनिश्चितता ने, उथल पुथल ने अंदर एक व्यवस्था की, एक निश्चितता की तलाश को और तेज कर दिया हो। कुछ ऐसे पक्के नियम जिन्हें कोई राजा या क्रांति बदल ना सके।
अच्छा, ये एक नजरिया हो सकता है।
हाँ, और न्यूटन के काम ने प्राकृतिक दुनिया के लिए शायद वही स्थिरता, वही व्यवस्था दी जिसकी उस वक्त समाज को शायद अवचेतन में तलाश थी।
और उनके समकालीन भी तो थे, जॉन लॉक, क्रिस्टोफर रेन, और वो जिनके साथ उनके झगड़े मशहूर हैं, रॉबर्ट हुक और लाइबनिट्स।
हाँ, उन पर भी बात करेंगे, बड़े दिलचस्प लोग थे उस दौर में।
चलिए अब जरा न्यूटन के निजी जीवन की तरफ चलते हैं। वुल्सथॉर्प में जन्म हुआ, वो भी समय से पहले, पिता का साया जन्म से पहले ही उठ गया था। शुरुआत तो काफी मुश्किल रही होगी।
बहुत मुश्किल, और फिर जब उनकी माँ ने दूसरी शादी की तो नन्हे न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया गया। बचपन काफी अकेला बीता, लेकिन कहते हैं ना, कई बार इसी अकेलेपन में कुछ और पनपता है। उनकी जो मैकेनिकल स्किल थी वो कमाल की थी बचपन से ही।
अच्छा, क्या बनाते थे?
अरे, छोटी पवन चक्कियों, धूप से चलने वाली घड़ियां, पानी की घड़ियां, ये सब बनाते थे। हाथ बहुत साफ था और दिमाग जिज्ञासु।
फिर वो कैम्ब्रिज गए, ट्रिनिटी कॉलेज, 1661 में। वहां भी शुरुआत में तो वही अरस्तु वाली पढ़ाई।
हाँ, जो सदियों से चली आ रही थी। लेकिन न्यूटन का मन उसमें नहीं रमा, वो डेस्कार्टेज और जो नया विज्ञान उभर रहा था उसकी तरफ खींचते चले गए।
और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, 1665-66 का ग्रेट प्लेग।
हाँ, एनिस मिराबिलिस, यानी चमत्कारिक वर्ष। प्लेग की वजह से कैम्ब्रिज बंद हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, न्यूटन भी वुल्सथॉर्प लौट आए।
और ये जो 2 साल उन्होंने गांव में अकेलेपन में बिताए, ये उनके लिए वरदान साबित हुए।
बिल्कुल, एकांत में गहन चिंतन का समय मिला, और इसी दौरान सोचिए उन्होंने कैलकुलस की नींव रखी, जिसे वो फ्लक्शन की विधि कहते थे,
बदलाव को नापने का गणित।
हाँ, फिर प्रकाश और रंगों पर उनके जो क्रांतिकारी विचार थे वो भी इसी दौरान आए। और सबसे बड़ी बात, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का आइडिया, वो भी इसी दौर में उनके दिमाग में कौंधा।
ये सब एक साथ उन्हीं 2 सालों में?
कमाल है।
हाँ, इसीलिए इसे चमत्कारिक वर्ष कहते हैं। दुनिया महामारी से जूझ रही थी और ये नौजवान अकेले बैठकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य सुलझा रहा था।
वाकई अविश्वसनीय। एक आपदा ने वो स्पेस दिया जिसने विज्ञान का नक्शा बदल दिया। इसके बाद तो उनका करियर चल निकला होगा।
हाँ, हालांकि आइडियाज दिमाग में थे, उन्हें पक्का करने, लिखने और दुनिया के सामने लाने में समय लगा, पर कैम्ब्रिज लौटते उनकी प्रतिभा पहचान ली गई 1669 में। सोचिए, महज 26 साल की उम्र में वो कैम्ब्रिज में गणित के लुकेशन प्रोफेसर बन गए। ये बहुत बड़ा सम्मान था, वही पद जिस पर बाद में स्टीवन हॉकिंग भी रहे।
अच्छा, ये तो बड़ी बात है।
फिर 1672 में रॉयल सोसाइटी के फेलो बने, और फिर आया 1687 जब उनकी वो महान कृति छपी, प्रिंसिपिया मैथमेटिका।
प्रिंसिपिया पूरा नाम तो जुबान पर चढ़ता ही नहीं, फिलोसोफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। कहते हैं ये विज्ञान के इतिहास की सबसे अहम किताब है। ऐसा क्या था इसमें?
इसमें न्यूटन ने दिए गति के अपने 3 नियम, जो आज भी हम स्कूलों में पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी बात, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम।
वही सेव वाली कहानी?
कहानी तो शायद बाद में जोड़ी गई, लेकिन आइडिया यही था
जी।
कि वही अनदेखी शक्ति जो सेब को नीचे खींचती है, वही शक्ति चांद को पृथ्वी के चारों ओर घुमाती है और पृथ्वी को सूरज के। ये सोचना ही उस वक्त दुस्साहस था।
बिल्कुल, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक ही नियम से बंधे हैं।
हाँ, यही तो कमाल था।
हाँ।
उन्होंने खगोलीय और स्थलीय भौतिकी को एक ही गणितीय ढांचे में बांध दिया, एक सिंगल सुरुचिपूर्ण सिस्टम।
ये वाकई दिमाग हिला देने वाला विचार रहा होगा उस समय। अच्छा, और उनकी दूसरी बड़ी किताब थी ऑप्टिक्स, प्रकाश के बारे में।
जी हाँ, ऑप्टिक्स आए 1704 में।
हाँ।
इसमें उन्होंने अपने सालों के एक्सपेरिमेंट्स का निचोड़ दिया।
हाँ।
खासकर वो प्रिज्म वाला प्रयोग बड़ा फेमस है।
हाँ, जिसमें उन्होंने दिखाया कि सूरज की सफेद रोशनी असल में
वो इंद्रधनुष के 7 रंगों का मिक्सचर है, VIBGYOR। और इसी किताब में उन्होंने तर्क दिया कि प्रकाश शायद छोटे छोटे कणों यानी कॉर्पसल्स से बना है,
जिसे कणिका सिद्धांत या कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन न्यूटन की दुनिया सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स तक ही नहीं थी। ये बात मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है कि उन्होंने कीमिया यानी एल्केमी और धर्मशास्त्र पर भी बहुत कुछ लिखा।
हाँ, और ये बात कई लोगों को चौंकाती है। सच तो ये है कि उन्होंने फिजिक्स और मैथ्स से कहीं ज्यादा पन्ने कीमिया और बाइबल की गुप्त व्याख्याओं पर लिखे हैं, लाखों शब्द।
सच में लाखों शब्द?
हाँ, और ये चीजें ज्यादातर छुपी रहीं, 20वीं सदी में जाकर सामने आईं। इनसे एक अलग ही न्यूटन नजर आता है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ भौतिक नियमों की नहीं बल्कि ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यमयी, शायद आध्यात्मिक नियमों की भी तलाश में था।
मतलब वो पारस पत्थर ढूंढ रहे थे, धातुओं को सोने में बदलने का तरीका।
हाँ, कीमिया का एक बड़ा लक्ष्य यही था। वो मानते थे कि प्रकृति में गहरे राज छिपे हैं, जिन्हें शायद प्रयोगशाला के साथ साथ प्राचीन ज्ञान से भी खोला जा सकता है।
तो एक ही वक्त में वो लैब में प्रिज्म से रोशनी गुजार रहे थे और दूसरी तरफ पुराने ग्रंथों में मतलब ढूंढ रहे थे, ये कैसे मुमकिन है?
देखिए, आज हमारे लिए विज्ञान और रहस्यवाद शायद 2 अलग-अलग डिब्बे हैं, पर न्यूटन के जमाने में और शायद उनके दिमाग में ये विभाजन उतना साफ नहीं था। उनके लिए ये सब शायद एक ही बड़ी सच्चाई को जानने के अलग अलग रास्ते थे, वो पूरी तस्वीर देखना चाहते थे।
ये एक अलग ही नजरिया देता है उनके व्यक्तित्व का।
बिल्कुल, जटिल व्यक्तित्व था।
तो अगर उनके मुख्य बौद्धिक योगदानों को समेटें तो गुरुत्वाकर्षण के अलावा क्या कहेंगे? पहला तो वही हो गया जिसने सब कुछ एक कर दिया।
हाँ, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण, स्थलीय और खगोलीय भौतिकी का एकीकरण। दूसरा बड़ा आइडिया था वो क्लॉकवर्क यूनिवर्स का,
घड़ी की तरह चलने वाला ब्रह्मांड।
हाँ, मतलब ये सोचना कि ब्रह्मांड एक विशाल, जटिल लेकिन पूरी तरह से नियमों पर चलने वाली मशीन है, जैसे किसी ने एक परफेक्ट घड़ी बनाकर छोड़ दी हो। यह आइडिया ज्ञानोदय के युग में बहुत प्रभावशाली हुआ, इसने तर्क और व्यवस्था में विश्वास बढ़ाया।
और तीसरा, उनका वैज्ञानिक तरीका, वो प्रयोग और गणित पर जोर।
हाँ, अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म पर उनका जोर, ये कहना कि ज्ञान का आधार अवलोकन होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए और फिर उसे गणित की भाषा में व्यक्त करना चाहिए, न कि सिर्फ माम लेना या अटकलें लगाना।
इसी से जुड़ी है उनकी वो मशहूर लाइन, हाइपोथेसिस नॉन फिंगो, मैं परिकल्पना नहीं करता।
जी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सोचते नहीं थे या अंदाजा नहीं लगाते थे, मतलब ये था कि वो अंतिम कारणों पर अटकलें नहीं लगाना चाहते थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण क्यों है, ये बताने के बजाय वो ये बताते थे कि ये कैसे काम करता है और उसे गणित में कैसे लिखा जा सकता है।
तथ्यों पर टिके रहना।
बिल्कुल, पहले देखो, नापो, फिर नियम बनाओ, अटकलबाजी से बचो।
और एक चौथा विचार भी था, निरपेक्ष स्थान और समय का, एब्सोल्यूट स्पेस एंड टाइम।
हाँ, उनका मानना था कि स्पेस और टाइम अपने आप में मौजूद है, एक तरह का खाली स्टेज जिस पर दुनिया का सारा खेल चल रहा है। ये किसी पदार्थ या गति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये एब्सोल्यूट है।
हालांकि बाद में आइंस्टाइन ने इसे बदला।
हाँ, आइंस्टाइन ने दिखाया कि स्पेस और टाइम सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं। लेकिन न्यूटन के लिए उनके पूरे सिस्टम का ये आधार था।
इन सब विचारों ने मिलकर तो अगले 200 साल के लिए विज्ञान की दिशा ही तय कर दी होगी।
बिल्कुल, क्लासिकल फिजिक्स की नींव पड़ गई और इसका असर सिर्फ विज्ञान तक ही नहीं रहा।
अच्छा, और कहाँ तक गया?
दार्शनिकों पर बहुत असर हुआ। जॉन लॉक, वॉल्टेयर, इन लोगों ने सोचा कि अगर प्रकृति के इतने सटीक नियम खोजे जा सकते हैं तो क्या समाज के, राजनीति के, इंसान के सोचने के भी ऐसे ही प्राकृतिक नियम नहीं हो सकते।
इसने ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट को हवा दी। तर्क, विवेक, प्राकृतिक कानून, इन विचारों को बल मिला।
सही कहा।
अगर न्यूटन की तुलना उनके समकालीनों से करें, जैसे डेकार्टिस से, क्या फर्क था दोनों के अप्रोच में?
जमीन आसमान का फर्क था। डेकार्टेस थे तर्कवादी यानी रैशनलिस्ट। वो मानते थे कि दिमाग से, शुद्ध तर्क से ही सच्चाई तक पहुंचा जा सकता है। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं से शुरू करके उन्होंने पूरी दुनिया की व्याख्या करने की कोशिश की।
और न्यूटन?
न्यूटन थे अनुभववादी यानी एम्पिरिसिस्ट। उन्होंने कहा, नहीं, पहले दुनिया को देखो, प्रयोग करो, आंकड़े जमा करो, फिर गणित का इस्तेमाल करके नियम बनाओ। एक अंदर से बाहर जा रहा था, दूसरा बाहर से अंदर आ रहा था, ऐसा कह सकते हैं।
और गैलीलियो और केपलर का काम न्यूटन ने उसे आगे बढ़ाया?
हाँ बिल्कुल, गैलीलियो ने दिखाया कि फिजिक्स में गणित कितना जरूरी है। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि ग्रह ऐसे क्यों चलते हैं।
अच्छा,
न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम से समझाया कि केपलर के नियम क्यों सही हैं। उन्होंने इन दोनों के काम को लिया और एक विशाल एकीकृत सिद्धांत में गूंथ दिया, जैसे बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरो दिया हो।
तो न्यूटन की विरासत आज भी जिंदा है, भले ही 20वीं सदी में आइंस्टीन और क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि न्यूटन के नियम हर जगह लागू नहीं होते।
उनकी विरासत जबरदस्त है। देखिए, ये सच है कि बहुत बड़े स्केल पर, जैसे ब्रह्मांड के लेवल पर, या बहुत छोटे स्केल पर, जैसे एटम के अंदर, न्यूटन के नियम पूरी तरह फिट नहीं बैठते। वहां आइंस्टाइन और क्वांटम मैकेनिक्स के जरूरत पड़ती है।
लेकिन
हमारी रोजमर्रा की दुनिया में, जो न बहुत बड़ी है न बहुत छोटी, उसमें न्यूटन के नियम आज भी कमाल की सटीकता से काम करते हैं। पुल बनाने हो, गाड़ी चलानी हो, रॉकेट भेजना हो, सब न्यूटन के नियमों पर ही आधारित है।
और कैलकुलस, वो तो आज भी मैथ्स और इंजीनियरिंग की रीढ़ है।
बिल्कुल, कैलकुलस और उनका वैज्ञानिक तरीका, मतलब सवाल पूछो, प्रयोग करो, गणितीय मॉडल बनाओ, फिर उसे टेस्ट करो, ये आज भी मॉडर्न साइंस का आधार है।
न्यूटन के कुछ कोट्स भी बड़े मशहूर हैं। एक तो वो वाला, अगर मैंने और दूर तक देखा है तो ये दिग्गजों के कंधों पर खड़े होकर संभव हुआ है।
हाँ, ये उन्होंने 1675 में रॉबर्ट हुक को एक चिट्ठी में लिखा था। अक्सर इसे उनकी विनम्रता की मिसाल माना जाता है।
लेकिन इसमें भी पेच है।
कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये शायद एक छिपा हुआ ताना था, क्योंकि रॉबर्ट हुक का कद छोटा था। न्यूटन और हुक की प्रतिद्वंदिता जग जाहिर थी, तो कौन जाने।
अरे, ये तो मुझे पता नहीं था। अच्छा, एक और कोट जो मुझे बहुत पसंद है, वो समुद्र किनारे खेलने वाले बच्चे वाला।
हाँ, मैं दुनिया को कैसा दिखता हूँ ये तो मैं नहीं जानता, पर मैं खुद को समुद्र किनारे खेलते एक बच्चे जैसा पाता हूँ, जिसे कभी कोई ज्यादा चिकना पत्थर मिल जाता है या कोई सुंदर सा खोल और खुश हो जाता है, जबकि सच्चाई का विशाल समुंदर उसके सामने अनदेखा पड़ा है।
कितना गहरा है ये, मतलब इतनी बड़ी खोजों के बाद भी।
हाँ, वो मानते थे कि जो हम जानते हैं वो उस विशाल अज्ञात के सामने कुछ भी नहीं है। ये सच्ची बौद्धिक विनम्रता है।
और तीसरा, हाइपोथेसिस नॉन फिंगो, इसकी बात तो हमने की ही।
हाँ, उनके काम करने के तरीके का सार, अटकलों से बचो, सबूत पर ध्यान दो।
चलिए, अब कुछ विवादों और रोचक किस्सों पर आते हैं। कैलकुलस वाला झगड़ा तो बहुत बड़ा था लाइबनिस के साथ।
हाँ, विज्ञान के इतिहास का शायद सबसे कड़वा विवाद। आज ज्यादातर लोग मानते हैं कि दोनों ने लगभग एक ही समय पर अलग अलग कैलकुलस खोजा था,
लेकिन न्यूटन ने माना नहीं।
नहीं, न्यूटन और उनके समर्थकों ने लाइबनिस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और न्यूटन उस समय रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके एक कमिटी बनवाई जिसने लाइबनिस को दोषी ठहरा दिया। ये न्यूटन के चरित्र का एक, कह सकते हैं, अंधेरा पक्ष है।
और रॉबर्ट हुक के साथ भी उनकी ऐसी ही तनातनी थी।
बिल्कुल, प्रकाश के सिद्धांत को लेकर, गुरुत्वाकर्षण को लेकर, कई चीजों पर क्रेडिट के लिए उनमें लड़ाई चलती रहती थी। यहां तक कहा जाता है कि हुक की मौत के बाद न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी से हुक का एकमात्र जो पोर्ट्रेट था उसे हटवा दिया या नष्ट करवा दिया।
बाप रे, ये तो ठीक नहीं था। अच्छा, और उनके गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की भी शुरुआत में आलोचना हुई थी, वो एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात कि दूर से कैसे असर होता है।
हाँ, लाइबनिस जैसे लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि दो चीजें बिना किसी माध्यम के खाली स्पेस में एक दूसरे को कैसे खींच सकती हैं। ये उन्हें जादू जैसा लगा, तर्कसंगत नहीं लगा। न्यूटन खुद भी इसका क्यों नहीं बता पाए, बस कैसे बताया।
और ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है कि फिजिक्स से ज्यादा वक्त उन्होंने कीमिया और बाइबर पर लगाया।
हाँ, ये उनके जुनून थे। वो मानते थे कि इनमें भी प्रकृति के गहरे राज छिपे हैं। वो हर तरह से सच्चाई को डीकोड करना चाहते थे, चाहे वो गणित से हो, प्रयोग से, या प्राचीन रहस्यमय ज्ञान से।
और रॉयल मिंट यानी टकसाल के मुखिया के तौर पर उनका काम, वो जासूस की तरह जालसाजों के पीछे पड़ गए थे।
बिल्कुल, वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, टकसाल के वार्डन और फिर मास्टर बने तो बड़ी सख्ती दिखाई। भेस बदलकर सराय में जाते थे, नकली सिक्के बनाने वालों का पता लगाते थे, सबूत इकट्ठा करते थे और कईयों को फांसी पर चढ़वाया। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त थे।
उनका निजी स्वभाव भी बड़ा अजीब था, अकेले रहने वाले, गुस्सैल, आलोचना बर्दाश्त नहीं।
हाँ, काफी हद तक बहुत प्राइवेट इंसान थे, शादी नहीं की, दोस्त बहुत कम थे। अपनी आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तुरंत भड़क जाते थे। अपनी खोजों को भी कई बार सालों तक दबाए रखते थे, शायद इसी डर से कि कोई आलोचना ना कर दे या क्रेडिट ना ले ले।
और कुछ छोटी छोटी बातें भी हैं, जैसे क्रिसमस के दिन पैदा होना, सेब वाली कहानी का शायद बड़ा चढ़ा होना।
हाँ, सेब वाली कहानी शायद बाद में उन्होंने खुद ही फैलाई हो, गुरुत्वाकर्षण जैसे मुश्किल आइडिया को आसान बनाने के लिए। एक अच्छी इमेज बन गई, पर असल खोज तो सालों की मेहनत थी। और ये भी सच है कि वो निजी तौर पर ट्रिनिटी को नहीं मानते थे, जो उस समय बहुत बड़ी विधर्मी बात मानी जाती थी।
सचमुच एक बेहद जटिल बहुआयामी व्यक्तित्व, तर्कवादी वैज्ञानिक भी और रहस्यवादी साधक भी। तो अंत में क्या सबक मिलता है न्यूटन से, कोई एक विचार जो श्रोताओं के लिए छोड़ें?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक यही है कि ज्ञान की खोज सीधी रेखा में नहीं चलती। न्यूटन ने ब्रह्मांड में व्यवस्था खोजी गणित से भी, और कीमिया और धर्मशास्त्र जैसे रास्तों से भी, जिन्हें आज हम शायद अवैज्ञानिक कहें। वो दिखाते हैं कि इंसान सच्चाई को समझने के लिए कितने अलग अलग तरीकों से जूझता है। तर्क भी, रहस्य भी, दोनों उनके जीवन का हिस्सा थे। ये हमें शायद ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आज भी दुनिया को समझने के लिए सिर्फ एक ही तरीके पर निर्भर रह सकते हैं।
बहुत दिलचस्प बात कही, क्या तर्क, अनुभव, आस्था, अंतर्ज्ञान, ये सब मिलकर ही हमारी समझ को पूरा करते हैं। न्यूटन का जीवन शायद इसी जटिल मानवीय खोज का एक जबरदस्त उदाहरण है।
बिल्कुल, वो हमें दिखाते हैं कि सबसे बड़े सवालों के जवाब शायद किसी एक खिड़की से नहीं दिखते।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।